الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الرسول الصخلين محبوب رب المشرقين المغربين جد الحسن والحسين ابو القاسم محمد والا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الى متى حارو فیکا یا مولا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، آج یہ میرا فورتھ لیکچر ہے زمانے کے امام کے حالات کے اوپر، جو مسلسل تین دن سے تین لیکچر سے آپ کی خدمت میں بایوگرافی آف امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف بیان کر رہا تھا، وہ آج اس سلسلے کا فورتھ لیکچر ہے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلے گا. اسی لیے اس کی ضرورت پڑی کہ آج جو سب سے زیادہ جس امام کو ہم بھول کے بیٹھے ہوئے نا، وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف. اللہ ہم کو معاف کرے کہ جس امام کے ساتھ ہم کو اللہ کے سامنے جانا ہے، روز محشر ہم مولا کے ساتھ، مولا کے چاہنے والے مولا کے زمانے کے شیعہ جائیں گے. مولا حسن کے زمانے کے جو شیعہ تھے وہ مولا حسن کے ساتھ، مولا حسین کے زمانے کے جو شیعہ تھے مولا حسین کے ساتھ، امام زین العابدین علیہ السلام، وہاں سے ہر امام کے دور کے شیعہ اپنے امام کے ساتھ جائیں گے. اللہ قرآن میں ویری کلیئر میسیج دے رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوما ندو ہو کلو اناسم بے امام، کہ ہم تم کو تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو ہم جو جائیں گے وہ اس امام کے ساتھ نہیں جائیں گے، کسی امام کے ساتھ جائیں بات ایک ہی ہے، مولا کے ساتھ جاؤ یا مولا حسین کے، مولا حسن، کسی امام کے ساتھ یا امام زمانہ کے ساتھ. یہ ذہن میں مت رکھو کہ ارے میں ان کے ساتھ جاؤں گا. بابا یہ اصل امپورٹنٹ چیز ہوتی کہ امام کے ساتھ رہنا، امام کے ساتھ ہم موجود رہنا، امام کی ایک نظر کرم رہنا روز محشر ڈے آف ججمنٹ میں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. انلیس وی بلڈ اور ریلیشن شپ ود امام، امام ہمارے ساتھ کیسا رہیں گے. تو بہرحال، تو کل لاسٹ ویک جہاں بات پہنچی تھی میں وہیں سے لے کے چل رہا کہ لاسٹ ویک دو نائبین کا ذکر تھوڑا سا میں بریف کر دوں آپ کو کہ اسمالر اوکلٹیشن میں جو جس کو غیبت صغرا بولتے وہ شروع ہوئی تھی 15 شعبان 329 ہجری میں، 329 ہجری سوری 260 ہجری 8 ربیع الاول، 260 ہجری 8 ربیع الاول کو اسمالر اوکلٹیشن شروع ہوئی کہ جس میں 11 امام کی شہادت کے فوراً بعد، اس وقت زمانے کے امام کی جو ایج تھی وہ جسٹ 5 ایئرس کے تھے، 5 سال کے تھے. تو امام نے کیا کیا تھا کہ اپنا جو پہلا نائب بنا تھا وہ عثمان ابن سعید کو بنایا تھا، میں نے ان کا ذکر کیا. اس کے باپ جو امام کے نائب تھے وہ محمد ابن عثمان، انہی کے بیٹے محمد ابن عثمان تھے کہ جن کا پیریڈ 305 ہجری میں ختم ہوا، یعنی 260 ہجری سے 305 ہجری تک یہ باپ اور بیٹے دونوں امام کے ڈائریکٹ نائب تھے. یہ یاد رکھنا کہ یہ ڈائریکٹ نائب ہے، جو غیبت صغرا میں 4 امام کے ڈائریکٹ سکسیسر بولے، نائب بولیں، کہ جو مومنین سے کانٹیکٹ میں رہتے تھے اور مومنین سے کانٹیکٹ میں رہنے کے بعد امام ان سے ڈائریکٹ ملتے تھے، ڈائریکٹ امام زمانے کا امام ان سے ملتا تھا، اور جو مومنین کے لیٹرز ہوتے تھے، جو ان کے حاجات، جو ان کی دعائیں، جو ان کا خمس، یہ سارا وہ امام کو دیتے تھے. پھر امام یہ نائب کو بتاتے تھے کہ یہ لیٹر کا یہ جواب، اس کا یہ جواب، تو پھر وہ جا کے مومنین کو بتا دیتے تھے کہ امام نے تمہارے لیے یہ پیغام دیا، امام نے تمہارے خط کا یہ جواب دیا. بھارت تو اس طرح ویکلی بھی بعض وقت ملاقات ہوتی تھی، منتھلی بھی ملاقات ہوتی تھی، یا ریگولر ملاقات ہوتی تھی. یہ کوئی کتابوں میں نہیں ہے کہ کتنی ملاقاتیں امام نے کی ہیں اپنے ڈائریکٹ نائبین سے. میں یہاں ایک بات روک کے بولتا آپ کو کہ دیکھیں، ہم امام سے ڈائریکٹ نہیں مل سکتے. ویری کلیئر میرا میسیج، میں اگر یہ بولوں کہ میں امام سے ملتا ہوں تو میں جھوٹا ہوں، میں کاذب ہوں. امام ہم سے مل سکتا، ہم امام سے نہیں مل سکتے. ہمارا امام مجبور نہیں ہے کہ مل ہی نہیں سکتا. نو، یہ جو تصور ہے نا ہمارے پاس، اس تصور کو نکالو، یہ تصور نہیں ہے ہمارا. میں ویری کلیئر میسیج دے رہا کہ میں کہوں کہ میں امام سے ملتا ہوں تو میں جھوٹ بول رہا، میں بگ لائر ہوں، میں کبھی نہیں مل سکتا امام اگر میں یہ بولوں. لیکن میرا امام چاہے ڈیلی ہم سے مل سکتا، हल नमा इमाम से हमसे मिल सकता है, इसमें कोई वो ही नहीं है, इमाम हमारा मजबूर नहीं है। इवन जब स्मॉलर ऑकल्टेशन था, जब गैबत सोगरा थी, उस जमाने में भी नायब जाके डायरेक्ट नहीं मिलता था, इमाम आकर उनसे मिलते थे। इमाम आके मुख्तलिफ जगहों पर इमाम बता देते कि फुला मकाम पर मैं मिल, वहाँ आके इमाम, इमाम के लिए क्या है, इमाम खादिर मुतलक का मज़हर है, अल्लाह की सारी ताकतों का सारी सिफात का मज़हर है, मज़हर है औसाफ़े खुदा का नाम इमाम ज़माना जल्ला ताला फ़रजहू शरीफ, हर इमाम अल्लाह की सिफत का मज़हर है मेरा मतलब। तो इमाम आकर उनसे मिलता, तो तीसरा जब 305 हिजरी में दूसरे नायब का इंतखाब हुआ, उसके बाद इमाम ने दूसरे, अच्छा इमाम बताते थे कि अब मेरा थर्ड नायब कौन होगा, उनको बता, तो इसी ज़माने में तीसरा नायब हमारे बने हुसैन इब्ने रौ। ये बहुत ही पायस इंसान थे, बगदाद के रहने वाले, बहुत ही पायस थे, शिया सुन्नी इनको बहुत मानते हैं हुसैन इब्ने रौ को। और हुसैन इब्ने रौ से पहले एक और आलिम दीन थे जिसे अबुल हसन शलमगानी कहते, वो बहुत अच्छे आलिम थे एक ज़माने में, लेकिन सारा मजमा ये समझ रहा था, मैं सिर्फ हिस्ट्री बता रहा हूँ, अबुल हसन शलमगानी के बारे में पूरे शिया कम्युनिटी में ये बात थी कि तीसरे नायक अब ये बनेंगे, तीसरे नायक अबुल हसन बनेंगे। लेकिन दूसरे नायब के इंतखाब से 8 दिन पहले इमाम की तौखी आई, तौखी मुबारक। तौखी मुबारक किसको बोलते, इमाम उस ज़माने में लेटर्स लिखते थे, जिसको तौखी मुबारक बोलते, इमाम के हाथ का लेटर, इमाम लिख के एक लेटर भेजते थे जिसको तौखी मुबारक बोलते थे। तो इमाम के कई इसमें वो आए, इरशादात आए तौखी मुबारक में, कई चीज़ें आई, और इवन शेख मुफीद के इंतखाब पर इमाम का तौखी मुबारक आई थी। दोबारा तो इमाम का लेटर आया कि दूसरे नायब को कि तुम अपना नायब, थर्ड नायब तुम जो अपना सक्सेसर बनाओगे वो हुसैन इब्ने रौ को बनाओ। अबुल हसन शर्मगानी बिगड़ गए। अब सोचो कि जो इमाम का चाहने वाला था एक दौर में, जब उसको ओहदा नहीं मिला, स्टेटस नहीं मिला, इमाम ने अपना नायब नहीं बनाया तो बिगड़ गया। तो मैं यही बोल रहा कि इतना आसान नहीं है, हमारे पास भी आज यही है कि मैं इतनी इबादत कर रहा, मैं इतनी दुआ मांग रहा और मुझे कुछ नहीं मिल रहा। अरे ट्रस्ट ऑन योर अल्लाह कि अल्लाह जो करता, इमाम जो करता वो बेहतर करता। ये बिल्ड हो कि मौलाना मैं तो इतनी भी इबादत करता हूँ, मैं तो इतनी मजलिसें करता हूँ, मैं तो इतना डोनेशन देता हूँ, ये बीमारी मेरे पास क्यों है, ये प्रॉब्लम मेरे पास क्यों, ये जहन में कभी नहीं गया, ये कभी नहीं, ये तो खना में मौला का मौलाना तुम इसके बावजूद भी तुम कता कर, ये नाफरमानी है कि अगर दे तो खुश, नहीं दे तो नाराज, ये तो दुनिया वाली है बात होगी। इमाम के साथ कभी नहीं करना, ये कभी तसव्वुर में भी नहीं लाना कि मैं इतनी इबादत के बाद मेरे लिए ये प्रॉब्लम क्यों है। प्रॉब्लम आना वो भी मर्जी है इलाही, वो भी तुम्हारा इम्तिहान है। दोबारा तो अबुल हसन शर्मगानी बिगड़ गया, नाराज हो गया, वो मुर्तद हो गया, मुर्तद हो गया इमाम का। बाद में टॉकी आ गई कि ये जो है मुर्तद हो, ये हट गया, सीधे रास्ते से हट गया, सिरात मुस्तकीम से हटा। तीसरे नायब हुसैन इब्ने रौ, ये हुसैन इब्ने रौ कौन है? आप जो 14 शाबान की रात को जो आप अरीजा लिखते हैं ना, जो एक फेमस अरीजा है 15 शाबान की सुबह का, जो प्रिंटेड अरीजा आते बिल्कुल बारीक से दुआएं लिखी रहती, वो दुआ में आप पढ़ते हैं, वो जो अरीजा आप भेजते वो हुसैन इब्ने रौ के जरिए भेजते, तीसरे नायक के जरिए। ये भी बड़े पायस थे। इनका पीरियड चला 326 हिजरी तक, ऑलमोस्ट 17-18 साल 19 साल इनका पीरियड चला। उसके बाद इनका जब आखिरी वक्त आया तो इन्होंने अली इब्न समरी को अपना नायब बनाया। इनका पीरियड हुआ 326 हिजरी से 329 हिजरी। मैं पूरा आपको हिस्ट्री बताऊं। ये नायब, तीसरे नायब खत्म हुए, उसके बाद चौथा नायब शुरू। इनका पीरियड चला 329 हिजरी 15 शाबान तक। तो मैंने शायद पहली तकरीर में कहा था कि 15 शाबान जो है 3-4 चीजों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉलर ओकल्टेशन 15 शाबान को ख़त्म हुआ और हायर ओकल्टेशन शुरू हो गया गैबत कुबरा, जिसको बोलते हैं हम इस दौर में। इमाम की विलादत उसी 15 शाबान को होती है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जहूर इमाम भी 15 शाबान को होगा। तो बरा तो ये चार नायबीन का सिलसिला चला। मैंने कहा था कि पहले जो दो नायब जो गुजरे उनके ज़रिए से मैंने एक अरीज़ा दिया था आपको, और इस वक्त पूरी दुनिया में माशाल्लाह वो अरीज़ा घूम रहा। अरीज़ा इस वक्त मेरे फेसबुक के ऊपर है, जिसको भी डाउनलोड करना है वो फेसबुक से ले ले। और फेसबुक अकाउंट जो है मेरा ये जो YouTube अकाउंट है इसके कमेंट सेक्शन में आपको फेसबुक का मेरा आईडी मिल जाएगा। तो फेसबुक पे वो अरीजा अपलोड हो गया है, आप उससे डाउनलोड कर लें। लेकिन वेरी क्लियर, लेट मी क्लियर दिस, ये अरीजा है गौहरे यगाना किताब। मैं आपको बता रहा कि यह अरीजा मैंने नहीं लिखा, यह अरीजा गौहरे यगाना किताब का है। और ये अरीजा गौहरे यगाना किताब के पेज नंबर 400 से 401 तक है, 400 से 401 तक ये अरीजा है। बहुत अरसे से ये अरीजा बटा, दुनिया के हर हिस्से में ये अरीजा बटा, यूके में बटा, इंडिया में, बॉम्बे में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह बटा ये अरीजा, अफ्रीका में भी बटा। अब मुसलसल मुझे फोन, हमारे फेसबुक पे मैसेजेस आ रहे या व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे कि मैंने बहुत क्लियरली एक क्लिप भेजा है हाउ टू राइट अरीजा। ये जो पहले मैं अरीजा के बारे में बता दूँ, इसलिए अरीजा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में इमाम से क्लोज होने के लिए। फिर बोल रहा हूँ, अरीजा इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक रोल प्ले करता हमारी लाइफ में टू गेट क्लोज टू योर इमाम, टू गेट क्लोज टू योर इमाम। इसलिए जितना तुम लेटर्स लिखोगे उतना तुम सामने वाले, जब तुम लेटर दुनिया में भी जब ईमेल्स करते हो, अब आजकल तो लेटर्स नहीं लिख रहे, ईमेल कर, तुम डेली किसी को ईमेल कर रहे सलाम का, तो एक रिलेशनशिप बिल्ड होगी ना, एक रिश्ता बनेगा ना, वो तो रोज तुम्हारे लेटर का इंतजार करेगा, ईमेल का, अरे आज इनका ईमेल नहीं आया, बना रोज आता था सलाम का, खैरियत का। तो उसी तरह जैसा रिलेशनशिप दुनिया में बिल्ड होती है ना, उसी तरह इमाम से भी बिल्ड होती। अरीजा में फिर बोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हमारी लाइफ में टू गेट क्लोज टू इमाम। कैसे? तो ये अरीजा जो मैं आपको दे रहा हूं पेज नंबर 400 से 401, मैंने शायद बोला इससे पहले लेकिन एक दफा रिमाइंड कर दे, जब अरीजे की बात कर रहा हूं, ये कोई छोटी मोटी आपकी कोई हाजत है, रिस्क का थोड़ा सा मसला है, कोई परेशानी है, उसमें आप ये अरीजा नहीं लिखा। कोई खास हाजत है, प्लीज गौर से सुनो, सख्त है, खास हाजत है, इंपॉर्टेंट हाजत, लड़की की शादी नहीं होगी खुदा ना खासा, बिजनेस बिल्कुल डाउन हो गया इंशाल्लाह खुदा ना खासा डेब्ट्स में आ गए, मैं मिसाल दे रहा हूं, खुदा ना खासा कोई, खुदा ना खासा लाख बार खुदा ना खासा कोई बीमार हो, सख्त बीमार, बुखार आया, आप अरीजा जरूर लिखो, बुखार में लिखो अरीजा, लेकिन वो नॉर्मल अरीजा लिखो, एक वाइट पेपर लो, वाइट पेपर लेके जैसे जो मैंने बताया था स्टेप्स के साथ हाउ टू राइट अरीजा का क्लिप देखो, उसमें नॉर्मल अरीजा लिखो, एक वाइट पेपर पे लिखो, कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन ये जो अरीजा मैं दे रहा आपको 400 से 401 गौहरे यगाना किताब का जो अरीजा दे रहा, गौहरे यगाना किताब में 11 अरीजे हैं मौला के इसी तरह के, लेकिन एक एक हाजत के लिए वो। तो ये अरीजा जरूर लिखो, ये अरीजा मैंने भी 15 दिन लिखा था और मौला ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी अरीजा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अरीजा है। और ये अरीजा पहले जो दो नायब का मैंने जिक्र किया था ये उनके वसीले से लिखते हैं, उसमें नीचे जो है इनके नाम लिखे हुए, एक छोटी सी दुआ है, ये दुआ पढ़ के पानी में। अच्छा, अब बार बार ये सवालात आ रहे मेरे पास कि डालना का अरीजा लिख के करना क्या, बाबा क्या करना, यू शुड नो, अभी तक तुमने कोई अरीजा नहीं लिखा जो तुम आप पहला सवाल कर रहे हैं व्हाट टू डू, व्हाट यू मीन व्हाट टू डू, पानी में डालना, वाटर में डालो, पाउंड में डालो, लेक में डालो, रिवर में डालो, ओशन में डालो, सी में डालो, जहां चाहे डालो। मिसाल के तौर पर अमेरिका में कोई, अमेरिका में तो प्रॉब्लम ही नहीं, इतने बड़े बड़े आपको वहां पे बीचेस मिलेंगे, वहां जाके डालो, कोई गल्फ में है वहां पे भी बीच है, यूके में वहां पे भी अगर डाल सकते हैं यूके में डालो, नहीं डाल सकते। अच्छा, इसके दो ऑप्शन है कि अरीजा लिख के करना क्या, लोग कहते मौलाना क्या कुरान में रख देना, अरे बाबा कुरान में रखना ठीक है, लेकिन जो है अरीजा कुरान में रखने के लिए नहीं कहा गया, अरीजा कहा गया पानी में डालो, वहां से पहुंचता, बेहतरीन चीज पानी में डालना। अगर मुश्किल हो रहा आपको पानी में डालना, आपकी सिटी में कोई लेक नहीं है, कोई वेल नहीं है, कोई पाउंड नहीं है, कुछ नहीं, यू आर हेल्पलेस, कहां डालेंगे आप? तो अगर आपके घर में, अगर तुम्हारा घर में आंगन है, फ्रंट यार्ड है या बैक यार्ड है, जो भी, उसमें क्या करो, बैक यार्ड में जाओ, थोड़ा सा डिग करो जमीन को, उसमें दफन कर दो। दूसरा ऑप्शन दफन करने का है, आप उसको दफन कर दो, दूसरा ऑप्शन। अगर आप उसमें नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, अपने घर में आप फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में रहते, आपके पास कोई नहीं है, तो आपके घर के नीचे इधर उधर कोई गार्डन में जाओ, जमीन सब अल्लाह की है, ये याद रखो, पूरी ये जमीन जो है अल्लाह की जमीन है, ये आपकी, मैं ये नहीं बोला किसी के घर में जाके, किसी की बाउंड्री में जाके खोल के डालो अल्लाह की जमीन है, नो आई डोंट मीन इट, ये नहीं करना, मैं ये बोल रहा कि पूरी जमीन जो है अल्लाह की जमीन है। अगर किसी की प्राइवेट लैंड है तब नहीं जाना, उसके अलावा भी इतनी जमीन, तो कहीं भी अगर घर के पास मौका मिलता कहीं भी निकल। इसको इश्यू मत बनाओ, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। आपको अरीजा पानी में डालना है या दफन करना, अगर कुछ नहीं कर सकते, जमीन है ही नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं। आप दूर निकल जाओ, कार में दूर निकल जाओ, कहीं भी जमीन मिल जाती है आपको, हाईवे पे मिल जाती, उसमें क्या है, कोई बिग डील, कोई मसले ही नहीं आप। और ये नहीं मैं बोला कि 6 फीट नीचे जाके आप दफन करो, मैं कुछ बोल गया, 6 फीट नीचे तो अरीजा दफन नहीं करो, हमको दफन होना है, हमको दफन होना, अल्लाह हमको माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, तो फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव, अल्लाह माफ़ करे। इंशाल्लाह उसका भी पूरा जो है लेक्चर सारे फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव इंशाल्लाह, वो भी आपको इंशाल्लाह 10 लेक्चर्स आएंगे उसके, फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव के उस बार। तो आप कहीं भी जाओ, आप डिग करो, ज़मीन पर दफन करो, ये बेहतरीन तरीका है अरीजा लिखने का। लिखने के बाद लिखो उसी अंदाज से जैसे मेरे क्लिप सुनो, अरीजा लिखो, अरीजा ज़रूर लिखो। इंशाल्लाह आज आप सुन रहे मेरी बात, यू विल सी कि अरीजा लिखने के बाद आपका रिश्ता बनता, आपके हालात कैसे सही होते, आपका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते, आपके ऊपर एक नजर करम है इमाम ज़माना अजलुल्लाह ताला फरज और शरीफ कैसे होती देखो। यू बिलीव मी। तीसरे नायब हुसैन इब्ने रौ, जिनके थ्रू आप 15 शवान का अरीजा भेजे। चौथे नाम नायब अली इब्ने समरी, इनका पीरियड खत्म हुआ, आप एक सलवात पढ़ लें मोहम्मद वाले मोहम्मद, इनका पीरियड खत्म हुआ 15 शाबान 329। उस वक्त तक मेरे मौला की एज ऑलमोस्ट 75 ईयर्स हो गए थे, मौला 75 ईयर्स के हो गए। अब यहां पर अब सवाल है कि गैबत कुबरा का जब आगाज हुआ, यानी हायर ओकल्टेशन का आगाज हुआ, ये पीरियड में कई ऐसे काम बने, कई ऐसे हालात बदले। ये पीरियड 329 हिजरी बनी अब्बास के ज़माने का पीक पीरियड है, इमाम पर्दे में है, शियत पूरी फैली हुई है, नायबीन, इवन नायबीन का सिलसिला ख़त्म हो गया, डायरेक्ट नायबीन का। अब हमारे जितने मुश्तहिदीन हैं, जितने हमारे मर्जा, वो सारे नायब हैं इमाम। फिर बोल रहा कि इसमें भी आज बहस होती, ये डायरेक्ट नायब नहीं, डायरेक्ट अपॉइंटेड नायब तो सिर्फ 4 थे, उसके बाद ये जो इमाम का काम करेगा, जो इस वक्त हमारा मर्जा है, वो हम इमाम का नायब है, लेकिन इससे भी इमाम मिलता है, जब इमाम चाहता तो इससे इमाम मिलता, ऐसे इमाम नहीं मिलता। तो बस, तो ये पीरियड खत्म होने के बाद इस पीरियड का जब आखिरी हिस्सा आया, आखिरी हिस्सा वो मैंने आपसे बोला था कि मैं सरदाब का वाकया पढ़ूंगा, सरदाब मुकद्दस, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे सरदाब मुकद्दस। आखिरी मरतबा, प्लीज, अ वेरी इंपॉर्टेंट बातें आ रही है, लास्ट टाइम जो लोगों ने जमाने के इमाम को देखा वो सरदाब में देखा। सरदाब की इंपॉर्टेंस, कौन सा सरदाब, अल्लाह हमको सामरे की ज़ियारत नसीब करे। सामरे में मैंने कहा कि वहां पे सामरे में इस वक्त जो मौला का रोजा अस्करियन जिसको बोलते, जहां पे 10 इमाम, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और बीबी हकीमा खातून और बीबी नरजिस खातून एक ही जरिए के अंदर है, अल्लाह हमको ज्यारत नसीब करें। वो जैसी जाहिर ज्यारत करता है उसके बाद फौरन बाहर निकलता है, लेफ्ट साइड के ऊपर फ्यू स्टेप्स के ऊपर वो सरदाब मुकद्दस है, वो बेसमेंट सरदाब है ना, वो बेसमेंट। पुराने जमाने में एयर कंडीशन सिस्टम नहीं था, आज का 10वें इमाम और 11वें इमाम की का रोजा है, वो मौला 10वें इमाम का घर था। जब आप मदीने मुनवरा से आए थे तो आने के बाद आप इसी घर में रहते थे, आपकी शहादत के बाद आपको उनके घर ही में दफन किया गया, उसके बाद 11वें इमाम की शहादत के बाद भी 11वें इमाम को भी उसी जगह दफन किया गया, बीबी हकीमा खातून को भी वहीं किया गया, बीबी नरजिस खातून को भी। तो ये चारों मजार, चारों लहद ग्रेव जो है एक ही जरी के अंदर आज है, और इसी ये पूरा इमाम का घर था, वो एरिया पूरा वो जो था वो इमाम का घर था, और वहीं पे ये बेसमेंट है। आज तो बेसमेंट बहुत बड़ा एक्सटेंशन हो गया, जबरदस्त एक्सटेंशन हो गया, हजारों आदमी आ सकते हैं, लेकिन पुराने जमाने में इतना था, मुझे याद है, ये तो हाल का एक्सटेंशन, बिल्कुल हाल का, लेकिन पहले इतना नहीं था, पहले इट वॉज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, मौला का वो छोटा सा घर था, उसके नीचे का ये बेसमेंट है। ये जो बेसमेंट है ये इतनी बरकत की जगह, इतनी बरकत, ऐसी दुआएं जैसा रोजे में कबूल होती, इमाम कबूल होती, इसलिए कि इमाम का घर और इमाम का बेसमेंट, ये वो जगह है कि जहाँ पे 10वें इमाम, 11वें इमाम, बीबी नरजिस खातून, बीबी हकीमा खातून, इमाम ज़माना, सारी खानदान अहले बैत के लोग वहाँ रहते थे। समर, तो आप सोचो घर है एक्चुअली, एक्चुअली देखो तो घर है वो, बेसमेंट में जाके सो जो भी करते थे समर में, अब मौला के घर के अंदर ही है वो, तो इतनी जल्दी दुआ कबूल होती। अच्छा वहाँ पे जब जायरीन जाते, मैं इसलिए बोल रहा कि अब ये मेरा क्लिप सुनने के बाद इंशाल्लाह, मेरी ये तकरीर सुनने के बाद लोग ज्यारतों पे भी जाएंगे इंशाल्लाह, हम लोग सब जाएंगे इंशाल्लाह ज्यारतों पे, हालात सही होंगे इंशाल्लाह, जल्द से जल्द। मेरा दुआ है मेरे मौला इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़र्जो शरीफ फ़र्ज़ंद ज़हरा से कि मुहर्रम की भी हिफाजत करो, दौरे अज़ा बिल्कुल करीब है। आप सबसे मैं बोल रहा हूँ अपने लेक्चर में कि प्लीज़ अपने इमाम को पुकारो और इमाम से इस्तगासा करके बोलो कि मौला मुहर्रम की दौरे अज़ा की हिफाजत करो, आपके दादा का आपका जिक्र है, इसलिए कि इमाम दुआ नदवा में कहता आइन अल हसन व आइन अल हुसैन, इसी दुआ में इमाम कहता आइन तालिब व दम अल मखतूल व करबला, ये मेरे ज़माने के इमाम के जुमले है कि आइन तालिब व दम अल मखतूल व करबला। तो ज़माने के इमाम की बारगाह में हर लड़का लड़की औरत मर्द सबसे बोल रहा कि जो जो मेरी इस वक्त लेक्चर सुन रहा, ज़माने के इमाम की बारगाह में इस्तगासा करो, इस्तगासा करके ये दुआ करो कि मौला दौर अज़ा आपके जद का जिक्र उसी शान से अय्याम अज़ा होना जैसे हमेशा होते, मौला इसको नज़र बद से बचा लो, इसको इस वबा से, इस कोरोना वायरस से बचा लो। तो दोस्तों बहरहाल, तो वो जो बेसमेंट है ना, बेसमेंट का एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया जो मैं अब आपके सामने पढ़ रहा कि लास्ट टाइम लोगों ने वहाँ पे जाके देखा। अच्छा अब मैं आपको ये बता रहा था कि ज्यारत पे जब जाना तुम ना, तो बेसमेंट में जाना तो आमतौर पर क्या होता, ज़ायरीन के जो ग्रुप जाते, आम बात कर रहा कि ज़ायरीन के जो ग्रुप जाते हैं वो जाते हैं वहाँ इमाम की ज़ियारत पढ़ते, सगासा करते, एक दो रकअत नमाज़ पढ़े वापस आए। वहाँ के अहवाल बता रहा, वहाँ पे जब भी हम जाके अपने अल मुंतज़र के साथ जाते हैं या लंदन के ग्रुप के साथ मैं जाता हूँ, लीड करता हूँ, मैं लेके नहीं जाता, मैं लीड करता हूँ, तो मैं वहाँ पे जाने से पहले सामेरा पहुँचने से पहले पूरे रास्ते में सामेरे की हिस्ट्री बता देता कि सामेरा क्या जगह है, कैसी जगह है, और वहाँ पर कौन कौन दफन है, और वहाँ के अमाल क्या है। और मैं ये सबको बोलता कि अपने साथ एक दिन पहले के लेक्चर में होटल में ये बताता हूँ कि आप लोग कल अपने साथ पेपर और पेंसिल साथ लेके चलना। अच्छा अरीजा लिखने का भी जो तरीका है ना, कोशिश करो कि ज़ाफ़रान से लिखे जाए, कोशिश करो खाके शिफा से लिखी जाए, या फिर पेंसिल से लिखो पाक, इसलिए कि जितनी पाक और पाकिज़ा तरीक़े से इमाम को आप ख़त लिखेंगे उतना आपके ख़त में उस आपके लेटर में असर होगा। इसलिए कि सामने जिस पर्सनालिटी को आप लेटर भेज रहे हैं वो आए तथीर का मालिक है, आए तथीर के हिसार में है, वो पाक और पाकिज़ा है, तो उनको वही चीज़ चाहिए जो पाक और पाकिज़ा हो। तो खाके शिफा से बेहतर नहीं, खाके शिफा थोड़ी सी जो है आप पानी में कप में डालो, डाल के उससे जो है टूथपिक ले लो, कोई भी चीज़ ले लो उससे आप लिख सकते हैं, या ज़ाफ़रान ले लो, ज़ाफ़रान से भी लिख सकते हैं। अरीज़ा जो है मतलब मैं अपने ग्रुप को बोलता हूं कि वहां पे जो अमाल है वो बता रहा हूं। जब नीचे जाना तो सलाम किए इमाम ज़माना की नमाज दो रकअत नमाज जरूर पढ़ना, उसके बाद वो नमाज जो मस्जिद जमकरान में और मस्जिद सहला में पढ़ी जाती इमाम से हाजत की नमाज, या का नाम दो या का नस्तैन वाली नमाज जो सौ सौ मरतबा हम पढ़ते। अच्छा इस नमाज में थोड़ा सा एक टेक्निकली लोग जो गलती करते, ये का नाम दो या का नस्तैन तो सौ मरतबा बराबर पढ़ते, लेकिन सूरह खुल भी जो है सेवन टाइम्स पढ़ना है। अगर आप मस्जिद जमकरान में जाएंगे तो वहाँ पे पूरा नमाज का तरीका लिखा हुआ है, सात मरतबा एक अलम सात सूरह खुल, उसके बाद रुकू में जब जाते हैं तो आप सुबहाना रबियल अजीम व बेहमद सात मरतबा पढ़ना सेवन टाइम, और दोनों सजदों में सुबहाना रबियल आला व बेहमद सेवन सेवन टाइम्स बोलना। तो दो रकअत ये नमाज पढ़ना, मैं नमाज का बस थोड़ा सा तरीका बताया, ये नमाज नीचे झुक जाके जरूर पढ़ो। और यही नमाज मैं लोगों को जब हम मस्जिद सहला जाते और मस्जिद सहला जाकर जब हम उस मुसल्ले पे जाते हैं जो ज़माने के इमाम का मुसल्ला है, नॉर्मल जो वहाँ के ग्रुप्स है जो वहाँ पे लोग लेके जाते हैं तो वहाँ सिर्फ दो रकअत नमाज पढ़ी चले गए इमाम की, नहीं वो वहाँ पे भी ये नमाज पढ़ना उसका एक पूरा एक वाकया है। इंशाल्लाह आइंदा कोई मजलिस में, आइंदा कोई लेक्चर में कॉफ़ी वाला वाकया मैं ज़रूर पढ़ूंगा। तो पर तो सदा में मुकद्दस में जाके ये का नाम दो वह एक नस्तैन वाली नमाज पढ़ो, और हर आदमी बैठ के अरीज़ा लिखे वहाँ। इसलिए अब तो इतना बड़ा माशाल्लाह ह्यूज मैसिव हो गया कि कोई मसला नहीं है, आप बैठ जाए, बैठ के 10 मिनट जाएंगे, लेकिन अरीजा वहाँ जरूर लिखो। अरीजा लिख के कहाँ डालना है, वो जो छोटा सा रूम बना हुआ है जो इमाम ज़माना का जो मकाम है इमाम ज़माना है, ये तो एक्सटेंशन है नीचे, जो मकाम है इमाम ज़माना है वहाँ पे जाके आप डाल दो। यानी हम लोग हमेशा डालते हैं वहाँ लेटर अरीजा, उसके आपको अंदाज़ा नहीं है। देखिए जो नहीं करता उसको अंदाज़ा नहीं है कि क्या चीज़ है जो मौला ने हमको दी, और मैंने आपसे कहा कि अरीजा मौला अली के ज़माने में भी है, छठे इमाम के ज़माने के वाक़यात में भी मिलेगा। अरीजा कोई नई चीज़ नहीं है कि आप आज लिख रहे हैं, इसलिए कि इतनी अवेयरनेस हमारे पास नहीं। हमारे तस्वुर में यह है कि हमारे जो तस्वुर में एक आम कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी के आम तस्वुर में क्या है, 14 शाबान को लिखना है। वो एक फॉर्मेलिटी बनी हुई है कि वो उस दिन राखत लिखना है। चलो बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, वो ज़रूर लिखो। एटलीस्ट आप 14 को लिख रहे तो एक तो हजारा साल में, लेकिन रेगुलरली आप इसको लिख सकते, एवरी थर्सडे लिख सकते, हर विलादत में लिख सकते। जैसे आज इमाम रजा गरीब की विलादत थी, अल्लाह आप सबको मुबारक करे, आज 11 ज़िलहज है। मौला गरीब इमाम की विलादत बा सादत की जो बरकतें, रहमतें, नेमतें अल्लाह मेरे परवरदिगार करीम बांट रहा ना, इस इमाम ज़माना के नाम पे हमको भी बांट दे, हमारे पास भी वो रहमत आ जाए। और तू अपने इस आखिरी हुज्जत फर्जंद रजा ज़माने के इमाम को अल्लाह तू सलामत रख, और ज़हूर इमाम इंशाअल्लाह आइंदा जो हम 11 ज़िलहज करें वो इमाम के साथ करें इंशाअल्लाह। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आपने देखा आज 11 ज़िलहज है पूरी दुनिया में। तो इमाम को आज जैसा आज आप अरीजा लिखे, कई लोगों ने लिखा पाकिस्तान में, दुनिया मुख्तलिफ जगहों पे जो मुझे फोन आए थे, मैंने उनसे कहा था कि बाबा अरीजा लिखो, माशाल्लाह लोग, कई लोगों ने अरीजा लिखा इमाम की। आप क्या लिखना, विलादत में क्या लिखेंगे, उसी अंदाज से या सलाम बिस्मिल्लाह फर्जंद ज़हरा, हाँ भाई मौला, मौला की खैरियत पूछो, मौला को फौरन दुआ दो, अल्लाह आपको सलामत रखे, ये बोलने के बाद फिर आप बोलो मौला आई एम सॉरी, उसके बाद लिखो कि मौला आपको मुबारक हो, मौला आपको मुबारक हो। इसलिए कि असल वारिस जो है इस मुबारकबाद का लेने का वो इमाम ज़माना है, उनके बेटे हम नहीं हैं। हम एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन असल जो हकदार है वो कौन है, ज़माने का इमाम है। तो हम आज अगर आप अरीजा नहीं लें तो आप हर विलादत में सुबह में इमाम ज़माना को मुबारकबाद देना कि आपके दादा की विलादत है, आप मुझे भी। इसलिए कि अगर आज गरीब इमाम की प्लीज़ गौर से सुनो, गरीब इमाम की विलादत के नाम पे, मौला की विलादत पे अगर आज हमको रहमत आ रही है तो ज़माने के इमाम के थ्रू आ रही है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह हमको डायरेक्ट दे रहा, अपनी हुज्जत के जरिए दे रहा, इस आखिरी हुज्जत के जरिए। तो आप ज़माने के इमाम को बोलना कि मौला आज आपके ग्रैंडफादर की विलादत है, आपके जद की विलादत है, मौला आज आप असल हकदार मुबारक के आप हैं, मौला आपके दादा की विलादत है, आप उनके सदक़े में हमको दो। उसके बाद देखो तो इमाम से रिश्ता कैसे बनता, तो अरीजा भी लिखो, कुछ नहीं करो, मुबारकबाद का अरीजा लिख दो। अब इसी महीने की 23 तारीख को 23rd of ज़िलहज का गरीब इमाम की शहादत की एक डेट है, इसलिए गरीबुलगुरबा की 3 डेट्स शहादत है, एक 17 सफ़र है जो सब कॉन्टिनेंट में, 23 ज़िलहज अरब में है और 29 सफ़र मशहद मुकदस में। अब उलझो मत, एक ही इमाम के 3 तारीख है, कोई बात नहीं, हमको 3 दिन में मौका मिल रहा गरीब इमाम का मातम करने की। तो 23 ज़िलहज को क्या करना, 23rd ज़िलहज को क्या करो, खत लिखो, इसी अंदाज से खत लिख के। अब मुबारकबाद का नहीं, अब क्या लिख रहे हैं, मौला हम आपके दादा का फुर्सत दे रहे हैं आपको, मौला आपको हम आपके जद का गरीब इमाम का फुर्सा दे रहे कि हमको ज्यारत नसीब हो, हमारे फुर्से को कबूल करो। तो इस तरह अपने रिलेशनशिप को हर मौका देखो, जब किसी मासूम की विलादत है अरीजा लिखो। आप ये मत समझो कि अरीजा इतने कैसे लिख दो, अरे बाबा इतने तुम सलाम करते हो, तुम ज्यारत पढ़ते हो, तो अरीजा लिखने में क्या, अरीजा मासूम की तरफ से हमारे पास, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए कि इस टॉपिक पे लोग बोलते नहीं, इस टॉपिक पे लोगों ने अवेयरनेस को पैदा नहीं किया, जिसकी वजह से हम इतनी दूर हो गए, माइंड सब दूर हो गए कि अरीजा हम सिर्फ साल में एक दफा समझ रहे, नहीं, हर परेशानी में आप क्या समझ रहे, डेली लिखो खत, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डेली लिखो। आप रोज दुआ करते हो, ये इस टाइप ऑफ दुआ आप इन राइटिंग में अपनी हजार को पेश कर रहे इमाम की बारगाह में, व्हाट इज रॉन्ग। तो ये मत बोलोगे याद से हम 14 को लिखेंगे या विलादत में लिखेंगे, नो, हर इमाम की शहादत में लिखो। जब तुमको खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम, आपको मालूम है कि नबी मूसा इवन जब टूटेक होता था, टूटेक दांत का दर्द, जाके अल्लाह को बोलते परवरदिगार देख मुझे टूटेक हो रहा, क्या अल्लाह को नहीं मालूम है, दुआ का ये तरीका है। नबी मूसा के बारे में बड़ा मशहूर है कि हर चीज को जाके अल्लाह को बोलते, और अल्लाह बोलता कि ठीक है, कोई डजंट मैटर, वो डायरेक्ट अल्लाह से बात करते थे। तो यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इमाम से देखिए, अब मैं आपको एक बात और बोलूं, बहाना ढूंढो इमाम से खत किताबत करने का, क्या बोल गया यार, मैं क्या बोल गया,
बहाना ढूंढो, बहाना ढूंढो मौला से खत लिखने का। बड़े है ना, कायनात का मालिक है ना, जमीन और आसमान का मालिक है ना, अल्लाह की आखिरी हुज्जत है, अल्लाह की रहमत नेमत बरकत है, जिसके सदक़े में आज जमीन और आसमान बाकी है, वो इमाम ज़माना ही तो है। अब इतने बड़े आदमी से मैं मिलूं कैसे, इतने बड़े आदमी को मैं खत कैसे लिखूं? बहाना ढूंढो, बहाना ढूंढो। मौला आज आपके दादा की विलादत है, मौला आज आपके दादा की शहादत है, मौला मुझे ये हो गया। जितना तुम रिश्ते को मजबूत करते जाओगे, यू बिलीव मी, यू विल ग्रो लाइक दिस। अनबिलीवेबल है, तुम सोच नहीं सकते जो मौला से रिश्ते को मजबूत करने पर जो होता है। तो बहरहाल वक्त तेजी से निकलते जा रहा, मेरा वक्त खुद करीब से करीब होता जा रहा, इसलिए कि इमाम की टॉपिक ऐसी है कि इस पर मुसलसल बोल सकते। सताब मुकदस में 329 हिजरी 15 शवान से पहले, वो मरकज था शियों का, तीसरे नायब अली इब्ने समरी वहीं रहते, वहीं करीब में सामेरे में रहते, और सामेरा कैप्टन था बनी अब्बास का, मैंने इससे पहले बताया, और छौनी भी थी, यानी मिलिट्री बेस था बनी अब्बास का। आज भी सुन्नी दुश्मन अहले बैत, दुश्मन दीन वहाँ बहुत है, उसी के आगे तो सद्दाम जालिम का बस्ती तिक्रीत जो है उसी के आगे नॉर्थ में, ये नॉर्थ ऑफ इराक है, सामेरा इज इन नॉर्थ ऑफ इराक। और बार वहां पे हुकूमत को मालूम हुआ कि सामने का जो सरदाब है, जो बेसमेंट है, वहां पे शियों का एक मरकज बनता जा रहा, लोग जा रहे मिल रहे आ रहे, शियों का मरकज। और इनके आखिरी इमाम, ये तो गवर्नमेंट को मालूम हो गया था कि आज इमाम है, लेकिन वो ढूंढ रहे थे तलाश, इमाम तो गैबत में थे, स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था। आप सोचो यार, मैं अजीब बात, अजीब दौर है कि इतना सख्त पहरा हुकूमत का बनी अब्बास अपनी पूरी ट्राई कर रहा था कि 12वें को खत्म कर दो, 12वां खत्म हो गया तो सिलसिला ही खत्म हो जाएगा, और हर वजह से कोशिश कर रहे, शियों को मार रहे थे, तो शिया पूरे तखिए में चले गए थे, इन्हें खुल के आ रहे नहीं थे सामने, बनी अब्बास जालिमीन का दौर, उसके बावजूद हक के इमाम देते थे, क्या बात है, उसके बावजूद अपने ईमान से रिश्ते को कायम रखते थे। आज सारी चीजें आज हमारे सामने, कोई रुकावट नहीं है, अगर आप ईमान से इस्तगासा करो, ईमान के नाम पे कुम्स दो, ईमान के लिए नजर करो, ईमान के लिए सलवार पढ़ दो, कोई रोकता है? कोई बोलता है कि व्हाट आर यू डूइंग, मैं तुम्हें मार दूंगा? आज कोई नहीं बोलता। उसके बाद इतना फ्रीडम के बाद भी आज हम अपने ईमान को नहीं भूला, यही तो अफसोस है, यही तो अफसोस है। इतनी फ्रीडम के बाद भी कि कोई तुमको गन पॉइंट पे रोक रहा नहीं, कोई ये नहीं बोला कि तुम इमाम का नाम लोगे तो तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। उस जमाने में इतना सख्त पीरियड के बाद, इतने सख्त पीरियड के बाद मोमिनीन जमा होते, इमाम के लिए इस्तगासा करते, इमाम के हक में दुआ करते, इमाम को खत लिखते, इमाम का खत का जवाब आता, हक है इमाम देते। इज इट क्लियर नाउ व्हाट आई एम सेइंग? हक है इमाम देते, खाते बहुत अच्छा मौका था, अरे इमाम तो पर्दे में खा जाओ पूरा पैसा इमाम का, नहीं 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 नहीं, उनको पता था कि हराम पेट में जाएगा, हराम पेट में जाएगा तो फिर हम इमाम से कभी नहीं मिल सकते। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने मैसेज दे दिया दोस्तों, प्लीज बोल रहा मैं यूथ को बोल रहा कि तुम रिवोल्यूशन लाना, कि ऐसा माहौल हो जाना हमारे शहर का, हमारे जिंदगियों का, कि कोई इमाम का चाहने वाला ये नहीं बोलना कि मेरे पास बचता नहीं और मैं खुम्स नहीं दे सकता, हक इमाम नहीं दे सकता। हर बंदा देना तो फिर देखो कि जहूर इमाम कितनी जल्दी होता। मैं क्या बोल गया यार, क्या बोल गया, अफसोस। तो बहरहाल वक्त निकल जा रहा मेरे हाथ से। तो वहां पे बनी अब्बास को ये वो था कि ये शियत का मरकज बन रहा सरदाब। प्लीज मैं सरदाब के बारे में गौर से सुन, गौर से सुन, सरदाब मुकद्दस के बारे में कि ये शियत का आखिरी मरतबा, लास्ट टाइम जो लोगों ने इमाम को देखा, लास्ट टाइम इमाम को स्मॉलर ओकल्टेशन में जो ओपनली देखा, वो वाकया पढ़ा, बड़ा मशहूर वाकया, आमतौर पर नहीं पढ़ा जाता। हुआ क्या, हुकूमत के जासूस स्पाई से जाके जालिम हाकिम से कहा कि शियत का मरकज बन रहा, इनका बारवा वहां बैठा हुआ है। तो इसने हाकिम वक्त ने क्या किया, बनी अब्बास का जो रूलर था उस जालिम, उसने 10,000, उस जमाने की 10,000 बहुत होते, 10,000 की स्ट्रांग आर्मी, 10,000 की स्ट्रांग आर्मी, और उसका जो सरदार बनाया, लीडर बनाया, जो लीड कर रहा था, जो कमांडर था उस जालिम फौज का, एक दुश्मन दीन, दुश्मन अहले बैत, ऐसा सख्तरीन जो मौला का दुश्मन था उसको कमांडर बनाया। वो 10,000 की आर्मी को लेके बगदाद से या सामेरा शहर से सीधा जो है उस जगह पे स्पॉट पे पहुंचा जो स्पॉट आज सरदार मुकद्दस। अच्छा उस जमाने में ऐसा नहीं था, मौला का आज माशाल्लाह 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 अल्लाह नजर बस बच्चा बेहतरीन रोजा बेहतरीन वो है। उस जमाने में बिल्कुल छोटा सा घर मौला का, जहाँ मौला के कबूर ये चारों इनकी ग्रेव्स थी, हम ये छोटा सा सरदार मुकद्दस 10,000 की स्ट्रांग आर्मी वहां पे पहुंची, वो भी रात का वक्त, उसका पूरा कॉर्डन ऑफ कर लिया सरदार मुकद्दस का, और ऐसा लग रहा कि नीचे से कोई कुरान मजीद की तिलावत कर रहा, खूबसूरत आवाज में, बेहतरीन लहन, माम का लहन, अल्लाहु अकबर, मौला का लहन, आपको मालूम है लहन दाऊद, दाऊदी मशहूर है ना, नबी दाऊद का लहन बता चल, जिनके ऊपर जुबूर किताब है। अब एक मिनट सुन ले, आपको तो लुत्फ आएगा। नबी दाऊद के ऊपर जो होली बुक, चार होली बुक्स है ना, तौरात इंजील जबूर एंड कुरान, तौरात जो है मूसा पे आई, नबी मूसा पे, इंजील जनाब ईसा पे, और जबूर जो है इब्राहिम पे नहीं आई, तौरात आई जो इब्राहिम पे सहीफे है, जबूर जो है नबी दाऊद के पास है। नबी दाऊद जब तौरात अपने जबूर की तिलावत करते थे, गौर से सुनो, जबूर की जब तिलावत करते थे तो इस अंदाज से करते थे, आपको अजीब लगेगा, अजीब लगेगा, यू विल नॉट बिलीव, आपको तारीख इस्लाम में खसरतुल अंबिया में ये वाकया नबी दाऊद के वाकया में है, और लहन दाऊदी मशहूर है पूरी दुनिया में, जिस लहन के साथ वो तिलावत करते थे अपनी किताब का, तो चलते हुए लोग रुकते, आपको और हैरत बताऊं, परिंदे बर्ड्स ऐसे ठहर जाते, परिंदे बर्ड्स ऐसे ठहर जाते, इतना खूबसूरत लहन कि आदमी मां हो जाना उस लहन में पढ़ते थे। अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम, नबी खुदा पढ़ रहा, नबी खुदा की जबान से निकल रहा, जबूर इतनी खूबसूरत अंदाज से पढ़ते थे कि आज दुनिया में मशहूर है लहन दाऊदी, लहन दाऊदी ने नबी दाऊद का लहन, क्या लहन से पढ़ा। जब अल्लाह के रसूल के, प्लीज गौर से सुनो, जब अल्लाह के रसूल के सामने कहा गया कि लहन दाऊदी कितना मशहूर है, क्या लहन होगा या रसूल अल्लाह, तो आपने मुस्कुरा के कहा बेशक उनका लहन बेइंतहा अच्छा था, लेकिन मेरा भाई अली जन्नत में जब खुद उनसे कहा कि परिंदे ठहर जाते थे, लोग ठहर जाते थे उनका लहन को सुनने के लिए, लहन दाऊदी, तो कहा मेरे भाई अली जन्नत में जब कुरान की तिलावत करेंगे तो बेहतर करेंगे लहन दाऊदी से, नबी दाऊद के लहन से कहीं ज्यादा बेहतर मेरे भाई अली का लहन होगा, कि वहां पे भी यह होगा कि लोग अपने अपने मकाम पर ठहर जाएंगे, वहां जब मेरा मौला कुरान मजीद की तिलावत करेगा तो आप नेचुरली, दोस्तों ये सामित है और अली नातिक है, मेरा मौला नातिक है कुरान है, मौला से बेहतर कौन कुरान पढ़ने वाला, तो बहरहाल जब लहन की बात आई तो, और जमाने का इमाम नीचे से तिलावत कुरान पाक कर रहा था, जब कुरान पाक की बस क्या करूँ यार, वक्त ऐसा निकलता है कि 45 मिनट में मुझे ख़त्म करना है, 50 मिनट में ख़त्म कर दूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो लहन दाऊदी के मुकाबले में इमाम अगर कुरान पढ़े तो उनके अली का होता है, उनके दादा की किताब है, तो बहरहाल जो है नबी दाऊद, ये जो फौज आई थी, ये फौज जो आर्मी आई थी, उस आर्मी के कानों में इमाम के कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ आई, ये लोग समझ गए कि हाँ यही वो जगह, यही वो है, और यही ईशियों का इमाम है। आप एक सलात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये लोग समझ गए कि यही वो जगह है। तो उसने क्या, वो कमांडर ने जब मेरी तरफ देखे, प्लीज लुक एट मी, लुक एट मी, इसने क्या किया, उस कमांडर ने पूरा उसका 2-3 लेयर उस बेसमेंट को, उस घर को, मौला के रोजों को, पूरे उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया, फौज पूरी हर तरफ घेर लिया कि कोई निकलने ना पाए, और वो जो बेसमेंट का सुराख था जहां से नीचे जाते थे, आज तो बिल्कुल डिफरेंट है, उस जमाने में तो बेसमेंट था, आज मैंने देखा वो बेसमेंट बहुत छोटा सा था, बहुत एंट्री बहुत छोटी थी, अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत शानदार बन रहा, अल्लाह और शानदार बने, इसलिए जायरीन आए माशाल्लाह रहे, मौला की ज्यारत करे, तो वो नीचे उतरना चाह रहा था, वो जो कमांडर था उसने एक आदमी को भेजा, नीचे एक आदमी को भेजा, पूरी हर तरफ से फौज घेर ली कि अब जाके शियों के 12वें इमाम को गिरफ्तार करके हुकूमत में पेश कर दिया। उतरा नीचे तो देखा, अमेटर देखें लुक एट, देखा कि नीचे का जो बेसमेंट है सब पूरा उस, वो जो पानी वाला वाकया वो यही है, सामने पानी है, थोड़ा सा पानी है, और पानी की दूसरी साइड पे एक जवान मुसल्ला बिछा के कुरान पढ़ा। इसने कहा यही वो, यही वो बना, और उसकी ना खूबसूरत चेहरा मेरे मौला का चेहरा, अल्लाह का चेहरा। उसने कहा जाओ इनको गिरफ्तार करके लेकर। वो जैसे ही आया पानी में, उसने पानी देख रहे बिल्कुल पानी, बिल्कुल सतह ऊपर ही, बिल्कुल थोड़ा सा पानी, लेकिन जैसे ही उसने पैर डाला ऐसा लग रहा कि नीचे डूबने लगा, और चीख पुकार उसने की तो लोगों ने आगे उसको पकड़ लिया, पकड़ कर एक को निकाला, फिर दूसरा दे इमाम को कर लिया। उसने भी वही किया, उसके साथ भी वही हुआ कि पानी तो बिल्कुल ऊपर नजर आ रहा, लेकिन जैसे ही पैर डाल रहे डूबता जा रहा, डूबता जा रहा, फिर उसने चीख पुकार की, उसको हटा लिया। अब जो कमांडर था, असल कमांडर जो जालिम तरीन इंसान था, उसने ये कहा नहीं तुम लोगों को गलत फहमी हो रही, मैं जाऊंगा इस जवान को पकड़ूंगा। अब ये चला, ये इसने जैसे ही पैर डाला इमाम ने इसको पलट के देखा, मेरे जमाने के इमाम फर्जंद जहरा ने इसको पलट के देखा, बस उसके बाद ये वहीं सकते में ठहर गया। इमाम ने अपने मुसल्ले को रैप किया, नमाज ख़त्म की, मुसल्ले को रैप किया, रैप करके पानी में से चलते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर से ऊपर गए, ऊपर से बाहर पूरी फौज के सामने से निकल गए। जैसे इमाम बाहर निकले इसको होश आया, खड़ा हुआ, ऐसा लग रहा कि खड़ा हुआ है, इसके सामने से मौला जा रहे, कोई नजर ही नहीं आ रहा इसको। पानी का जो इमाम का वाक़ा है वो यही, मुसल्ले को रैप किया, पानी में से निकल के सीढ़ियाँ चढ़ के स्टेप्स पर चढ़ा, चढ़ के बाहर निकल गया। जब इमाम चले गए तो इसको होश आया, इसने कहा कि वो जवान कहाँ चले गए, तो इसके जो साथी थे लोगों ने कहा ये तो अभी हमारे सामने से गए, कहा तुमने पकड़ा क्यों नहीं, तो कहा आपने हुक्म दिया था जब तक मैं किसी हुक्म ना दूँ किसी को गिरफ्तार नहीं करना, वो हमारे। तो अब इसका जुमला इस कमांडर का कि मेरी आंखें थी लेकिन मेरी रोशनी कहाँ चली गई, मेरे कान थे कहाँ चले गए। अब दोस्तों उस वाक़े को याद करो जो मक्के में हुआ था 300 साल पहले, जब मक्के में अल्लाह का रसूल के घर को घेरा था, जिस रात में मेरा मौला बिस्तर रसूल पे सोया था, जिस रात में अल्लाह का रसूल हिजरत किया था, तो उस रात में अल्लाह ने पूरे मक्के के काफिर और मुशरिकीन तलवार को लेके मेरे रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर लिया था कि आज हम मोहम्मद को कत्ल कर देंगे, और उस बिस्तर पर उस रात को मेरा मौला सोया था, हुक्म रसूल से यही जुमला कहा था क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी, तो अल्लाह के रसूल ने कहा था या अली तुम्हारे सोने से मेरी जान बचेगी, तो उस वक्त मेरा मौला सोया था। तो अल्लाह का रसूल जो बाहर निकले थे पूरे अतराब में खातिल खड़े हुए तलवारों को लेके, अल्लाह का हुक्म आया था कि सूरह यासीन की आयत नंबर 9, सूरह यासीन की आयत नंबर 9, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना मिन बैने अयदीहिम सद्दन वमिन खल्फिहिम सद्दन फाख्शयनाहुम फहुम ला युबसिरून का ये आयत की तिलावत करो। रसूल ने क्या किया था, मिट्टी उठाई थी थोड़ी सी, खाक उठा के इस पे कंकरों पे इस पे पड़ा, पढ़ के इन काफिरों मुशरिकीन के सामने फेंके तो उनके सामने इस आयत का मतलब है कि अल्लाह ये कह रहा कि हम आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ एक दीवार खड़ा कर देते तुम्हारे सामने, उस दुश्मन के सामने एक दीवार आ जाती। तो अल्लाह के रसूल ने ये किया, पढ़ा, पढ़ के उन पे फेंका और उनके सामने से निकल गए। दोस्तों वो पहला मोहम्मद था, वो अव्वल मोहम्मद था जो मक्के में किया, ये आखिरी मोहम्मद था जो सामरे में किया। इसी जैसे वो मोहम्मद का मौजिजा वैसी इस मोहम्मद का मौजिजा, गुल्लोना मोहम्मद है। तो आपने देखा ये आयत नॉर्मल डेज में भी आपको इतना काम आएगी, इतनी काम आएगी, जब भी अगर आप हक पे कोई दुश्मन आपके साथ है, कभी आप इमिग्रेशन में जा रहे कहीं जा रहे, तो ये आयत पढ़ के जाओ, पढ़ के उसके सामने वाले के ऊपर फूंक दो, तुम्हारे हक में फैसला होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत एक इंटरेस्टिंग बात, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ में भी कभी इश्यू होता ना, ये हमारे पास नहीं होता, मैं जनरल बात करा, डोंट मिसअंडरस्टैंड कि जब भी मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ पे होता है, या डॉटर इन लॉ अगर जो है हक पे है तो वो 9 सलावात पढ़े, उसके बाद ये आयत पढ़े सूरह यासीन की आयत नंबर 9, और पढ़ के दुआ करे कि अल्लाह इनके दिल को मेरे लिए नरम कर दे, इनके सामने मदरिल्ला के ऊपर पढ़ के फूंक दो कि वो बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसा आप चाहते। तो बस दोस्तों मौला आपको आबाद रखे, सलामत रखे, अल्लाह हमारे इस اس عمل کو، اس تقریر کو، اس جشن کو قبول کرے۔ آج بے انتہا بڑا دن تھا، غریب امام کی ولادت کا دن تھا، اور اللہ یہ خوشی کے صدقے میں، غریب الغربا کی ولادت با سعادت کے صدقے میں، ان کے بیٹے زمانے کے امام کے ظہور میں اللہ تو تعجیل فرما، اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما۔ بس دوستو، اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا۔ نیکسٹ ویک کی میری ففتھ اسپیچ ہوں گی اسی امام زمانہ پہ۔ اب نیکسٹ ویک سے بڑے انٹرسٹنگ واقعات آئیں گے کہ کیا کیا ہونے والا ہے، کون کون امام سے ملا، اور ظہور امام کیا۔ بس آخری بات ایک بات بولتا کہ اب صلوات جب بھی پڑھو وہ اجل فرجہم کے ساتھ پڑھو، انشاءاللہ وہ اجل فرجہم کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک کے مجلس میں آپ کو بتاؤں گا، تقریب میں بتاؤں گا۔ اسی طرح فرائیڈے کے دن، نیکسٹ فرائیڈے انشاءاللہ 9 PM شارپ میں اپنے چینل پہ آؤں گا۔ آپ اس کو سبسکرائب کریں اور جتنا ہو سکے اس کو پروپوگیٹ کریں، اس لیے کہ کوئی ایک بھی امام زمانہ سے قریب ہو جائے گا تو اس کا ثواب آپ کو ہوگا۔ جتنا ہو سکے اس کو آگے بڑھائیں اسپیچز کو، اس لیے کہ کسی ایک کو بھی معرفت امام زمانہ ملے گی آپ کے ذریعے سے، تو امام تم کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ۔ 3 مرتبہ صلوات پڑھیں، اور امام زمانہ کی بارگاہ میں غریب الغربا کی ولادت کی مبارکباد آپ سب کی طرف سے، میری طرف سے۔ اور امام کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، کرونا وائرس سے بچنے کے لیے، اس بیماری سے نجات دینے کے لیے، اللہ امام کی سلامتی کے لیے، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کی بلندی میں، بالخصوص میرے والدین کے درجات کی بلندی کے لیے، اور آج کل بہت حالات خراب ہو رہے، بہت شیعوں میں موت ہو رہی، ان کی حفاظت کے لیے، ساری دنیا کی شیعت کی حفاظت کے لیے، عزاداری کی حفاظت کے لیے، محرم کی حفاظت کے لیے، مولا کے حسین کے ذکر کی حفاظت کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، اور امام سے رابطہ قائم رہنے کے لیے، معرفت امام میں اضافہ کے لیے، اور امام کے ظہور میں تاجیل ہونے کے لیے، 3 مرتبہ صلوات آپ لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ 3 مرتبہ صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم، اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ و آلہ آبائہ فی حاضر سا و فی کل سا ولیاں و حافظاً و قائداً و ناصرہ و دلیلاً و آئینہ حتیٰ تسکنہ و زکاتہ و تمتہ فیہا طویلہ برحمتکا یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ایک سورہ فاتحہ جمیع مومنین و مومنات، اور آج جس کی پہلی رات ہے ان کے لیے، اور یہ جو چاروں نائبین جو امام کے نائبین تھے سمالر اوکلٹیشن میں، ان کے لیے اور میرے والدین کے لیے، اور جس کی آج پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ